आज का प्रातः क्लास ये है 18
ए 1966
शनिवार को रिकॉर्ड चला है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत के अर्थ को तो समझ गए। हम आत्माओं का, क्योंकि अभी आत्माओं की बात हुई ना, धरती के सितारे, और प्रिंसिपल व मुख्य है तो आत्मा। अभी तुम बच्चे जानती हो कि हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। अथवा परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारी आत्मा रूह व सोल, सुप्रीम सोल के सामने बैठी। तुमको भी शरीर है और इनको सिर्फ लोन लिया हुआ शरीर है। किनको? परमपिता परमात्मा को। ये तुम बच्चे अच्छी तरह से जान चुके। अच्छा, यात्रा पर सदैव कोई गुरु ले जाते हैं, और गुरु तो भक्ति मार्ग के अनेक होते हैं, ढेर के ढेर। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। किंतु भारत में वास्तव में स्त्री का पति, उनको भी कहा जाता है, इनको भी गुरु समझो, ईश्वर समझो, सब कुछ समझो। अब देखो भारत में इतने गुरु, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम सभी बच्चे हो ना, ये तो जानते हो ना। अभी हम बेहद बाप के बेहद के बच्चे हैं। और बेहद के बाप से हम बेहद के बच्चे फिर से वर्षा लेने आए हैं। अर्थात हमको अभी दुर्गति से सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, यह कहें हम पतित हैं, पावन होने के लिए बुलाते हैं। पतित को पावन करने वाला, तो जो पतित को पावन करने वाला है वो भी गुरु हुआ। क्योंकि गुरु ही साथ में ये गंगा यमुना त्रिवेणी वगैरह पर ले जाते। तो देखो गुरु ढेर है ना, कितने गुरु आते होंगे वहाँ, ढेर के ढेर गुरु आते हैं। कोई का 100 होगा, कोई का 50 होगा, कोई छोटे छोटे भी आते हैं। किसको 60 50 फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, कथा सुनाते हैं। और कोई गुरु को तो लाखों फॉलोअर्स हैं। कोई कोई को तो करोड़ों भी हैं। जैसे देखो खुर्दों का गुरु वो आगा खां, पता है उनको कितने फॉलोअर्स हैं और कितना उनका रिगार्ड है। फिर कुछ वो करता भी हो, बड़े ठाठ वाला है। शादी करने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, तुम्हें मालूम है कितना उनका मान रखते हैं। बाबा ने समझाया ना, भक्ति मार्ग में गुरु अनेक ढेर के ढेर, और पीछे वो भी नंबरवार। कोई गुरु की कमाई पद्म पद्म, और आगा खां की कमाई तो बहुत। अपने गुरु को हीरो में तौल करके उनको दान किया था उनके शिष्यों ने। तुम लोग तो इतना पढ़ते लिखते नहीं हो, ये सब बातें सुनते नहीं हो, छाछठ की वाणी है ना। तो एक तरफ में ये और दूसरे तरफ में उनका गुरु, उसको बाबा नहीं कहते हैं, टीचर नहीं कहते हैं, गुरु सिर्फ एक नाम। तुम्हारा तो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। देखो भक्ति मार्ग वालों का गुरु का प्रभाव कितना होता है। उनको ये हीरे एक तरफ में और दूसरी तरफ में गुरु को, वो हीरे उनको दान करते हैं। बताओ सब कितना माल होगा। एक तरफ में सोना, और सोना तो आजकल बहुतों को वजन में करके देते हैं। پھر دوسری دھات ہوتی ہے سونے سے بھی مہنگی، اس کو انگریزی میں پلیٹینیم کہتے ہیں، جو زیور کے کام میں اور ان کے بارود کے کام میں ہوتے ہیں. وہ پلیٹینیم بہت سخت ہوتا ہے، سونے سے بھی بہت سخت ہے. تو ان کے بہت کام میں آتا ہے، وہ بھی وزن کر کے ان کو دیا تھا. اب دیکھو اس گرو کا مرتبہ، ابھی ایسے گرو تو بہت ہیں، بتاؤ ابھی اس گرو کو جو تم کو ملا ہے اس کو تم کیا دیں گے؟ ارے گروؤں کو تولنے کی یہ پرمپرا جو پڑی بھکتی مارگ میں، اس کا فاؤنڈیشن کہاں پڑتا ہے؟ کیسے؟ اس دیہد کے باپ کو تولیں گے بجن میں؟ نہیں تولیں گے. کیسے؟ وہ باپ کس میں آتا ہے؟ ارے منوشی سرشتی کے باپ میں آتا ہے نا. جو منوشی سرشتی کا باپ وشو کا مالک بنتا ہے، اس وشو کے مالک کے پاس جو بھی پرجا ہوگی وہ سونے جیسی ہوگی یا ہیروں جیسی ہوگی؟ تو تول بتائی، اشارہ دیا، ایک طرف اس وشو کے بادشاہ کو رکھو اور دوسری طرف اتنا پلیٹینیم رکھو. تو پوچھا ان گرو کو تم تولیں گے بجن میں؟ تولیں گے یا نہیں تولیں گے؟ بابا بولتے ہیں تم ان کو ہیرے وزن کر کے دیں گے اچھا ان کا وزن ہو سکتا ہے؟ بھکتی مارگ میں کرشن بھگوان کو دکھایا ہے، اور کرشن تو بھگوان ہوتا نہیں، بھگوان تو شیو شنکر بھولے ناتھ ہے. ان کو وزن کیا तो सत्यभामा के पास जो भी हीरा सोना जहाज जवाहरात था सारा रख दिया और उनका वजन पूरा नहीं हुआ। अभी बाप कहते हैं इनका वजन तो कुछ है ही नहीं, अभी कोई वजन है? अरे अभी इनका कोई वजन है या नहीं है? है बाप कहते हैं मैं तुमको फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाता हूँ, तो फुल बैगर का कोई वजन होगा? होगा नहीं? तो देखो इनका खुद का ही वजन नहीं है, चलो शिव की बिंदी को तो एक तरफ रखो, उसकी तो बात ही छोड़ो। देखो ये गुरु तुम्हारा कितना वंडरफुल है, वंडरफुल के बारे में कुछ और बात बताई। वंडरफुल पार्ट के बारे में कुछ बताया है? हाँ, शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो बाप बैठ करके वो वंडरफुल उनको गुरु बैठ करके समझाते हैं। क्या करेंगे? इनको कोई भी कुछ भी वजन नहीं कर सकते हैं। वर्तमान की बात या भविष्य की बात? देखो इनका वजन ही नहीं है, सबसे हल्का, इसको कहा जाता है सबसे सूक्ष्म। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है ना, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो ये आत्मिक स्थिति में सूक्ष्म होने वाला इतना सूक्ष्म, तो उनका बाप भी सूक्ष्म। कौन? शिव बाप। और अभी फिर देखो ये तुम्हारा गुरु एक है, वो भक्ति मार्ग के अथाह गुरु और ज्ञान का गुरु एक है। ये बात तुम समझते हो, जानते हो, नहीं तो वो तो ज्ञान सुनते हैं रोज जाकर के कि भक्ति शास्त्र वेद फलाना फलाना, उनका नाम ज्ञान नहीं है बिल्कुल। ज्ञान जिसको कहा जाता है सदगति के लिए, वो दुनिया का कोई भी गुरु नहीं दे सकता। ये बच्चों को निश्चय हुआ ना, तो उन गुरुओं के पास किस वास्ते जाते हैं? बाप के पास तो आते हैं वर्षा लेने के लिए, टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, और कहे पेट की पूजा के लिए। अठारह छह छियासठ की वाणी का दूसरा पेज। अच्छा, गुरु के लिए काहे के वास्ते जाते हैं? वो गुरु सदगति तो दे नहीं सकता। देखो, उन गुरुओं से भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बाप से भी मिलता है कुछ। देखो, बाप बताते हैं फर्क, एकदम फर्क। गुरु की कितनी महिमा, कितना उनका वजन कराते हैं। और यहाँ बाप बैठ करके समझाते हैं, बाप से कुछ भी वर्षा मिलता है, टीचर से भी कुछ वर्षा मिलता है। उन गुरुओं से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, खाली उनको देते हैं। कितना मर्तबा देते हैं, हीरे सोना तौल के देते हैं। अब यहाँ तुम क्या देंगे? कुछ देंगे? नहीं। तुम तो जानते हो शिव बाबा, वो तो दाता है। दाता कुछ भी लेता नहीं है। भगवान लेता नहीं है, देता है। अच्छा, भगवान को सभी देते भी हैं। कहते हैं हम ईश्वरार्थ ये दान करते हैं। अरे भाई, ईश्वर अर्थ दान क्यों करते हैं? कहते हमको दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। हरे कोई न कोई कामना तो रखते हैं ना। गुरु में भी कामना होती है, सदगति की कामना। कोई गुरु में कहेंगे हमको पुत्र चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कामनाएं रखते हैं। अभी तुम लोग देखो, बाप बस इन जैसी निष्काम सेवा और कोई नहीं करते। सो भी निष्काम सेवा कैसी, बच्चों को विश्व का मालिक बनाना और खुद बिल्कुल नहीं बनना। ऐसा कुछ भक्ति मार्ग में दिखाते हैं है? अरे शास्त्रों में ऐसा कुछ दिखाया है, बोले भंडारी के बारे में क्या दिखाया है? फकीर दिखाते हैं। बच्चों को बादशाही का ताज देते हैं, उनको खुद को कोई ताज दिखाया जाता है, है? नहीं। देखो तुम तो सुखदाम के मालिक बनते हो और बाबा तो सुखदाम का मालिक नहीं बनता है। कौन बनता है फिर है? बच्चे नंबर बार बनते हैं, उनमें पहला बच्चा कौन है, है?
अरे
सुखदाम का जो मालिक बनते हैं बच्चे, उनमें पहला बच्चा कोई है या नहीं है? कौन है? श्री कृष्ण बच्चा है ना? अरे श्री कृष्ण कोई का तो बच्चा है कि नहीं है? श्री कृष्ण किससे बादशाही लेता है? नारायण से लेता है। तो बाबा सुखदाम का मालिक नहीं बनता है। आत्मा परमात्मा तो सदैव शांत स्वरूप है। अभी देखो इनको कहा जाता है ना, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बच्चों को यहाँ हर एक बात अच्छी तरह से समझना है, है? कैसे सुख का सागर, कैसे अरे सुख का सागर है तो परमधाम में है या इस दुनिया में है, कैसे? साकार में कैसे? साकार तो ढेर के ढेर मनुष्य है, वो सुख का सागर कैसे है? निराकार? अरे ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। वो गुरु लोग हैं अज्ञान के सागर और बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर है तो सुख का सागर होगा या नहीं होगा? हुआ, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बच्चों को यहाँ हर एक बात अच्छी तरह से समझना है, ऐसे नहीं कि 32 किरणों वाला चित्र बना लिया, उसमें 32 गुण दिखाई दिए, वो क्या समझते हैं? गुण बिंदु के समझते हैं कि साकार के समझते हैं? कौन? गुरु लोग। गुरु लोग साकार के समझते हैं। जिन्होंने वो चित्र बनाया है 32 किरणों वाला, वो साकार के गुण समझते हैं, वो बिंदु के गुण समझते? अरे बिंदु तो निर्गुण निराकार है, बिंदु में गुण और अवगुण होते हैं क्या? निराकार में कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। गुण और अवगुण किस में होते हैं? साकार में होते हैं। तो देखो, एक बात तो ठीक है, समझाया है, फिर अगर एक बात से ही जीवन मुक्ति, तो फिर इतना समय क्यों लगना चाहिए? कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गायी हुई है। कैसे, कौन से सेकंड में जीवन मुक्ति? बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी देखो, इतना टाइम क्यों कहते हैं कि सागर है ज्ञान का? ऐसा ज्ञान का सागर है कि सारे सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ तो भी उसके ज्ञान का इंद नहीं होगा। इतना ज्ञान का सागर है वो। गुरुओं का ज्ञान तो पुस्तकों में बंधा हुआ है, शास्त्रों में बंधा हुआ है। जो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान पुस्तकों में बंधा हुआ है क्या? अभी शुरू से लेकर के तुम सुनते रहते हो, लिखते जाओ लिखते जाओ। पता है कितना वो पुस्तक बन जाएंगी? ढेर बड़ा वाला पुस्तक बन जाएगा। जो अगर तुम लिखते हो वो बहुत वैल्यूबल है, और ये गीता ग्रंथ तो सबसे वैल्यूबल है। कि नॉलेज गीता ज्ञान की नॉलेज सबसे वैल्यूबल है। क्यों? ज्ञान सागर की नॉलेज सबसे वैल्यूबल है या गीता माता की नॉलेज सबसे वैल्यूबल है? हैं? कैसे? हैं? ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उसमें बाप की पहचान नहीं है। ये तो कहते हैं ज्ञान सागर की ज्यादा वैल्यू है। अगर ज्ञान सागर की ज्यादा वैल्यू है, वो ज्ञान सागर साकार है या निराकार है, या निराकार साकार का मेल है? मेल है। उसकी ज्यादा वैल्यू बताते हैं। जो साकार निराकार का मेल है, वो जो ज्ञान देता है, उससे अभी सदगति हुई किसी की इतने साल में हुई, तो फिर काय के लिए वैल्यूबल है? होगी, वो गुरु लोग भी कहते हैं आगे चल के होगी, करते रहो पुरुषार्थ। नहीं, ज्ञान सागर पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? और पुरुष सब तो उनके द्वारा जो ज्ञान आता है वो बहुत वैल्यूबल हुआ। फिर गीता माता का नाम क्यों कहा? क्योंकि बता दिया विजय माला का आवाहन करना है, माता को गुरु बनाना पड़े साथ में। ऐसे नहीं भगवान सतगुरु है तो अकेले एक भगवान सतगुरु से सदगति हो जाएगी? हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? इसलिए नहीं हो जाएगी कि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सन्यासियों का प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सुनाते हैं। तो अभी जो ज्ञान सुनाया गया पुरुषतन से सुनाया गया, चाहे ब्रह्मा का तन हो और चाहे है प्रजापिता का हो या कहो शंकर का हो, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज वाला हो, है तो निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग क्या है? है कोई एक के साथ प्रवृत्ति पक्की है? है जगदम्बा के साथ पक्की हुई है? नहीं। कहते हैं गंगा अंत में निकलेगी, जैसे भारत माता के लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, तो जो अंत में निकली वो आदि में भी होगी कि नहीं? तो आदि में भी प्रवृत्ति और अंत में भी प्रवृत्ति चाहिए, इसलिए बोला गीता है माता। गीता है सबसे पहला ग्रंथ, और सब बाद में आते हैं। वो गीता सबसे वैल्यूबल है। क्यों? अरे भगवान का पार्ट वैल्यूबल नहीं? जो ज्ञान सागर का आ जाता है सागर है तो सागर में रतन ही रतन होते हैं कि कुछ और भी होता है? हैं? रतन ही होते हैं
और भी
है? अरे बड़ा कचरा होता है अथा। उन्होंने गीत बनाया है कि सागर में रतन भी है कचरा भी है। मंथन करने वाले को क्या निकालना चाहिए? काहे का मंथन करना है? ज्ञान का मंथन करना है। अब कोई ज्ञान का मंथन करे या सागर में कितना कचरा है उसका मंथन करे? कंपिल में एक कालेश्वरनाथ मंदिर है, उसका जो लिंग है वो गड्ढे में है। एक अंग्रेज अफसर आया था, उसने उस मंदिर को हटा करके जो एक ही पत्थर का बना हुआ था उसकी खुदाई कराना शुरू कर दी। जितना खोदता जाए उतना वो चौड़ा होता जाए। आखिरी खोदना बंद कर दिया। ऐसे ही है, जो सागर में ग्लानी का कचरा देखना चाहते हैं वो कितनी भी खुदाई करते जाएं उसका पार नहीं पाएंगे। तो देखो, सागर में कचरा भी है, सागर में विष भी निकला और सागर में रतन भी निकले। इसलिए बोला कि गीता सबसे वैल्यूबल है। ये नॉलेज है और तुम रोज लिखते हो, लिखते लिखते करते करते कागजों को क्या करते हो? तो जिनके पास बहुत खजाना होता है वो उसका क्या करेगा? खजाना तो धारण किया जाता है ना। अभी देखो, तुम बुद्धि से धारण किए जाते हो, बस पीछे वो काम का नहीं रहता। ऐसे तो नहीं है कि गीता सुन करके भाषण सुन करके फाड़ डालते हो, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया ना। तुम जन्म जन्मांतर वही चीज हो बहु वही गीता हर 5000 वर्ष के बाद वही भागवत वही रामायण वही फलाने फलाने वेद ग्रंथ शास्त्र जन्म भाई जन्म सुनते आए हो और सीढ़ी उतरते आए हो। शूटिंग कहाँ होती है? है? हो रही है या नहीं हो रही है? नीचे उतर रहे है? ऊपर चढ़ रहे? जो नए नए आए हैं वो तो सतो प्रधान स्टेज में है, वो तो कहेंगे कि हम ऊपर चढ़ रहे। अरे पुरानों से भी पूछ लो, नीचे उतर रहे हैं कि ऊपर चढ़ रहे हैं? अरे बीके वालों से पूछो। तो यहाँ संगम युग में बाप तुम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान का सागर सुनाते हैं। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? तो सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर जाता है या नहीं जाता है? क्यों जाता है? है? भक्ति मार्ग में तो इसलिए जाता है कि वहां भगवान होता ही नहीं। वास्तव में भगवान की पहचान वहां किसी को होती है? नहीं होती। इसलिए कहें कि नीचे जाता है। यहां संगम युग में क्यों नीचे जाता है? हैं? हैं? आज कहेंगे निश्चय बुद्धि, कल कहेंगे धैर्य, हम तो ऐसे ही अनिश्चय पत्र लिख दिया था। अब बाप के लिए कोई ऐसे कहेगा कि ये हमारा बाप? इसी में निश्चय बुद्धि हमारी कम है, पता नहीं बाप है कि नहीं है। होता है ऐसे? हैं? कोई बच्चा ऐसे कहता है, पता नहीं ये बाप हमारा है कि नहीं है? और यहाँ आज कहते हैं बाप है, कल कहते हैं तेरे की नहीं। तो ये भगवान तो क्या शैतान पल्ले पड़ गया? तन मन धन सब हमारा हर लिया। हम किसी दिन के नहीं रहे। वैसे ही भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर की उपासना करेंगे तो लंगोटिया बना देगा। ज्ञान की बातें ये तुम सुनते हो ना, तो ये जो कुछ सुनते रहते हो वो तुम फाड़ते जाते हो। कुछ सुने हुए की लिखे हुए की तुमको कोई दरकार नहीं रहती। फिर तो जो धारण करने की चीज है सब बुद्धि में, क्योंकि तुम जानते हो ये परंपरा तो चलने वाली चीज है नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी शास्त्र वेद ग्रंथ हैं, वो सब जल जाएंगे। तुम्हारा बाकी जो है जरा पुर्जा पन्ना पोथी, वो भी जल जाएगा। वो था तुम सारी दुनिया में सभी लैंग्वेज में गीत बनाए हुए हैं, और ये गीत कितने हैं? कुरान कितने छपे होंगे, पुराण कितने होंगे, और बाइबल कितने होंगे? तुम समझते हो कि इतने इतने शास्त्र हैं? जैसे कहा जाता है ना, गवर्नमेंट के पास इतने फाइल्स हैं, जो वहां से ले जाओ आप वो सारी फाइल्स रखो तो भी ढेर हो जाए। वैसे अगर ये तुम ज्ञान के, वो भी ढेर हो जावे। पर इतना नहीं। शास्त्रों का भी इतना ढेर हो जावे, लेकिन ये कुछ भी काम का नहीं। गवर्नमेंट की सारी फाइलें भी ढेर के ढेर, शास्त्र भी ढेर की ढेर, बाइबल कुरान भी, और ढेर का ढेर तुमने जो लिखा है, मुरली सुनते सुनते लिखा है ना, तो कुछ भी काम का नहीं है। काम का है, अभी देखो तुमको ये परिचय मिलता है, बाप का परिचय मिलता है। इसका बाप आकर के अपने परिचय देते हैं, बस अपना परिचय दिया तो वो परिचय काफी है। वास्तव में तो बाप का परिचय देने से, रचिता को जानने से रचना तो सस्ती हुई ना, तो वो झट बुद्धि में आ जाता है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये है रचना। फिर संगम युग भी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जानते हैं, इसमें पुनर्जन्म में आते रहते। ये बुद्धि कहती है कि बरोबर जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, पीछे जो आएंगे वो पीछे वाले कम जन्म लेंगे। अठारह छह 1966 की वाणी का तीसरा पेज। अच्छा, ये चक्कर में जब चक्कर फिरेगा तो जो पहले आप होंगे वो सतयुग में सभी पहले आवेंगे, पीछे त्रेता वाले, फिर द्वापर वाले, फिर कलयुग वाले। तो ये चक्कर भी तो समझना है ना। बस इस चक्कर को घर बैठे याद करना। तुम्हारी देखो सुना ना, हमारे तीर्थ बिल्कुल न्यारे, अभी अपनी बुद्धि से लो जन्म जन्मांतर की यात्रा। ये है तुम्हारी एक जन्म की यात्रा, और सो भी इस यात्रा में कोई तकलीफ नहीं है। देखो बच्चे, बहुत बुद्धि से काम लेना है, कोई बिल्कुल जरा सी भी तकलीफ नहीं है इस यात्रा में। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। तो जिस्मानी यात्रा में देखो कितनी तकलीफें होती हैं, और जन्म बाई जन्म कितना वो तकलीफें उठाते हैं। तभी बाबा कहते हैं ना, देखो भक्ति मार्ग में अनेक गुरु, अनेक जन्म में दूसरे दूसरे गुरु होते हैं, हर जन्म में गुरु बदल जाता है, और उस जन्म में भी एक गुरु नहीं, एक दो तीन चार पांच आठ दस गुरु भी कर लेते हैं। जैसे ये बाबा अपना मिसाल देते हैं कि मैंने दस बारह गुरु दर्जन गुरु किया होगा, अच्छा आगे जन्म में पता नहीं कितना किया होगा। उसके आगे जन्म में पता नहीं कितने गुरु किए होंगे तुमने, और सो भी कोई एक एक थोड़े ही किया। तुम देखो सारी मनुष्य सृष्टि में कितने गुरु हैं, ढेर के ढेर, करोड़ों लाखों। अगर भारत में लो तो करोड़ों, क्योंकि हर स्त्री का पति भी गुरु, ये पीछे की बात है, पति भी गुरु हो गया। कितना फिर ये भक्ति मार्ग में सदगति किसकी भी हो न सकती है, और ही दुर्गति हो जाती है। ये पति जो गुरु बनकर बैठते हैं वो भी दुर्गति करते हैं ना। तो बच्चों ने समझा ना कि भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर गुरु और ज्ञान के लिए एक है सुप्रीम बाबा, ज्ञान का सागर। ज्ञान से होती है सदगति, तो ज्ञान का सागर बस, और क्या चाहिए। सागर माना ही सर्व की सदगति। सर्व की सदगति में क्या आ जाता है, अरे बच्चे सब आ जाता है। अरे ये पांचों जड़ तत्व भी आ जाते हैं, इन जड़ तत्वों की भी सदगति होती है। ये तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, कि सारी सृष्टि तमो प्रधान। देखो ये वायु ये कितना तूफान लाती है, ये धरती कितनी अर्थकेक लाती है, कितना नुकसान कर देती है। ये सब तत्व दुख देने वाले, कि तुम बच्चे जानते हो कि सचिव में कोई भी चीज दुख नहीं देती है, कोई एक दो को दुख नहीं देता। तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे सचिव के मालिक बनने वाले हो ना। तुझे बच्चे याद रख देना, बाबा है दुख हरता सुख करता, तो तुम भी इनके बच्चे हो, तो तुम किसको भी दुख नहीं दे सकते हो। और ही रास्ता बताना होता है सुख का वर्षा पाने के लिए, इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं देखो बच्चे अगर तुम किसको दुख देंगे, क्योंकि तुमको तो सुख ही देना है, बाबा आकर के सुख देते हैं, ऐसा सुख देते हैं जो दुख का नाम निशान नहीं रहता। ओम शांति।